بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کے شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے. آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ ہود کی 45ویں, 46ویں اور 47ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں. تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں شری میر زادہ واقفی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا, ہے رب, میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور نشچے ہی تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے. کہا, ہے نوح, وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں, وہ تو اششٹ کرم ہے, تو تو ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی گیان نہیں ہے. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اجانی لوگوں میں سے نہ ہو جا. کہا, ہے رب, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शनिवार है, फरवरी की 18, रजब की 27 और बहमन माह की 29 तारीख। एक घंटे तक चलने वाला ये कार्यक्रम विगत की ही भांति विश्व समाचारों से आरंभ किया जाएगा। विश्व समाचारों के बाद आप राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के उपरांत हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनाएंगे ईरानी व्यंजन, और हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा अच्छी आदतें। दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, parstoday.ir/hi। अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hindi@wsirib.ir। अब कुछ ही क्षणों में विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। वरिष्ठ नेता ने कहा है कि फिलिस्तीन का समर्थन जारी रहेगा। राष्ट्रपति का कहना है कि शत्रुओं के षड्यंत्रों को ईरानी जनता ने विफल बना दिया। ईरान ने कराची के आतंकी हमले की निंदा की है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन कभी भी क्रीमिया को वापस नहीं ले पाएगा। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि ईरानोफोबिया का मुख्य कारण इस्लामी गणतंत्र ईरान द्वारा बेफिक्र होकर फिलिस्तीनियों का समर्थन करना है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामिनेई ने कहा कि ईरान की इस्लामी व्यवस्था बिना किसी हिचकिचाहट के फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करती रहेगी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी की घोषणा के अवसर पर शनिवार को इस्लामी गणतंत्र ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों, इस्लामी देशों के प्रतिनिधियों, राजदूतों तथा पवित्र कुरान के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शामिल होने वाले मेहमानों ने तेहरान में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता से मुलाकात की। इस मुलाकात में वरिष्ठ नेता ने फिलिस्तीन की अत्याचारग्रस्त जनता के समर्थन के संबंध में इस्लामी गणतंत्र ईरान की स्पष्ट नीतियों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि वे सरकारें जिनको फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करना चाहिए था, वे इस्लाम के शत्रुओं की हां में हां मिलाते हुए ईरानोफोबिया के प्रचार में लगी हुई हैं। वरिष्ठ नेता का कहना था कि फिलिस्तीन का मामला इस्लामी जगत की कमजोरी और उसके घाव का हिस्सा है। एक राष्ट्र इस समय इस्लामी जगत के सामने एक अत्याचारी और दुष्ट शासन के अत्याचारों का शिकार है, जबकि इस्लामी देश अपनी अपार संपदा क्षमताओं और धन दौलत के बावजूद केवल मूक दर्शक बने हुए हैं। विशेष बात यह है कि इन्हीं में से कुछ देश तो हालिया दिनों में इस खूंखार शासन के पिछलग्गू बने हुए हैं। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि अब तो हालत ये हो गई है कि मुसलमानों की समस्याओं का समाधान का दावा करते हुए अमरीका, फ्रांस तथा कुछ अन्य देश इस्लामी जगत में हस्तक्षेप को अपना अधिकार समझ बैठे हैं। हालांकि ये वे देश हैं जो स्वयं अपनी व्यवस्था को चलाने में पूरी तरह से अक्षम रहे हैं। राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि ईरानी राष्ट्र ने अपने प्रतिरोध से शत्रुओं के षड्यंत्रों को विफल बना दिया। ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता की वर्षगांठ के अवसर पर निकाली जाने वाली राष्ट्रव्यापी रैलियों की राष्ट्रपति ने सराहना की। उन्होंने कहा कि क्रांति की सफलता की 44वीं वर्षगांठ पर जनता ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति का कहना था कि इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद दुश्मनों ने ईरानी राष्ट्र के सामने वैसी ही आर्थिक, राजनीतिक एवं प्राचारिक समस्याएं खड़ी कर दी जैसी इस्लाम के उदय के आरंभिक काल में खड़ी की गई थी। ईरान के एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर ने कहा है कि दुश्मनों की किसी भी आक्रामकता का करारा जवाब दिया जाएगा। जनरल अली रजा सबाही फर्द ने देश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में वायु रक्षा उपलब्धियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दुश्मनों द्वारा पेश किए जाने वाले खतरों और शैतानी चालों को देखते हुए देश के सशस्त्र बलों ने एक रणनीति अपनाई है। इस रणनीति के अंतर्गत हर तरह के खतरे से निपटने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नीति के दृष्टिगत दुश्मनों के दुस्साहस का करारा जवाब दिया जाएगा। कराची में हुए हमले की ईरान ने निंदा की है। कराची में किए जाने वाले आतंकी हमले की ईरान ने निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कराची में पुलिस के मुख्यालय पर हुए आतंकी आक्रमण की निंदा करते हुए पाकिस्तान की जनता, सरकार और घटना के प्रभावितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। उन्होंने इस आतंकी हमले में मरने वालों के लिए दुआ और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के महानगर कराची में शुक्रवार की शाम पुलिस के मुख्यालय पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले के दौरान कम से कम 3 आतंकी मारे गए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लगभग 3.5 घंटे के बाद ऑपरेशन पूरा हुआ, जिसके दौरान 3 आतंकी मारे गए। सूत्रों का कहना है कि आतंकवादी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि 2 पुलिस कार्रवाई में मारे गए। आतंकवादी गुट दाइश ने सीरिया में 53 आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अलमयादीन टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के होम्स में आतंकवादियों ने अपनी आतंकी कार्रवाई के अंतर्गत कम से कम 53 लोगों की हत्या कर दी। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि सीरिया के होम्स नगर के पूर्वी क्षेत्र असोखना में दाइश के आतंकवादियों ने उस समय हिंसक कार्रवाई की जब बहुत से लोग मशरूम जमा कर रहे थे। पिछले एक वर्ष के दौरान सीरिया में दाइश के आतंकवादियों का ये सबसे भयानक कृत्य बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों ने इन आम लोगों पर अकारण ही गोलीबारी शुरू कर दी थी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दाइश के आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंधक भी बनाया था और बाद में वहां पर सरेआम उनको फांसी दे दी गई। मृतकों में एक सैन्य अधिकारी भी शामिल बताया जा रहा है। अस्पताल में पहुंचने वाले शवों में से अधिकांश के सिरों पर गोलियों के निशान हैं। उत्तरी कोरिया ने फिर मिसाइल दागी है, जबकि दक्षिणी कोरिया सैन्य अभ्यास पर अड़ा हुआ है। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया को कल चेतावनी देने के बाद आज उत्तरी कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है। उत्तरी कोरिया ने शुक्रवार को अमेरिका तथा दक्षिणी कोरिया से सैन्य अभ्यास न करने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी पर ध्यान दिए बिना ही अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ कर दिया। इसी बीच शनिवार को रिपोर्ट मिली कि उत्तरी कोरिया ने आज एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। उत्तरी कोरिया की ओर से यह मिसाइल पूर्वी सागर की ओर दागा गया। इसी बीच जापान के कोस्ट गार्ड्स ने भी इसकी पुष्टि की है। जापान के तट रक्षकों का मानना है कि उत्तरी कोरिया की ओर से दागा गया मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी विश्वास के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि मिसाइल किस प्रकार का था और ये कहां तक गया। पिछले महीने जनवरी में उत्तरी कोरिया ने कम दूरी की मारक क्षमता वाला एक अन्य मिसाइल छोड़ा था। उत्तरी कोरिया की ओर से संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में दी जाने वाली चेतावनी के बावजूद दक्षिणी कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार की रात बताया कि ये देश अगले महीने अमरीका के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। दक्षिणी कोरिया का दावा है कि उत्तरी कोरिया की धमकियों के ही कारण वो अमरीका के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहा है। इस सैन्य अभ्यास का नाम फ्रीडम शील्ड है, जो 11 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। एक अमरीकी सेनेटर का कहना है कि क्रीमिया अब कभी भी वापस यूक्रेन को नहीं मिल पाएगा। अमरीकी संसद में सैन्य समिति के एक सदस्य का मानना है कि यूक्रेन की सेना क्रीमिया को वापस लेने की सैन्य क्षमता नहीं रखती है। एडम स्मिथ ने कहा कि सन 2014 में यूक्रेन से जो क्रीमिया अलग हो गया था, अब वो वापस यूक्रेन को नहीं मिल पाएगा। 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच आरंभ होने वाले युद्ध के समय से ही क्रीमिया पर यूक्रेन की सेना कई बार हमले कर चुकी है। सन 2014 में होने वाले जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया का विलय रूस में हो गया था। यूक्रेन का कहना है कि अपनी धरती के हर हिस्से को वापस लेने के लिए वो प्रयास करता रहेगा। अमरीकी सेनेटर ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि नेटो के घटक पूर्वी यूरोप में चलने वाली लड़ाई में आसानी से क्रीमिया को वापस नहीं ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बात पर बहुत से लोग एकमत हैं कि सैन्य मार्ग से यूक्रेन कभी भी क्रीमिया को वापस नहीं ले पाएगा। भारत के विदेश मंत्री ने अमरीकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को जिद्दी और खतरनाक बताया है। अमरीका के अरबपति व्यापारी जॉर्ज सोरोस ने अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, किंतु वे स्वयं लोकतांत्रिक नहीं हैं। सोरोस के अनुसार नरेंद्र मोदी मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा करके बहुत तेजी से बड़े नेता बन गए। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री ने सोरोस को बहुत जिद्दी और खतरनाक बताते हुए कहा कि सोरोस को ऐसा लगता है कि यदि उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो चुनाव अच्छा है, लेकिन अगर परिणाम दूसरा निकलता है तो वो उस देश के लोकतंत्र में कमियां ढूंढने लगते हैं। इससे पहले भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा था कि जॉर्ज सोरोस भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने की मंशा रखते हैं। चीन में एक हाई प्रोफाइल बैंकर बाओ फैन लापता हो गए हैं। बाओ की कंपनी ने बताया है कि पिछले दो दशकों में देश के सबसे सफल सौदागरों में शामिल रहे एक बैंकर के साथ उनका संपर्क टूट गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार इस चीनी उद्योगपति के लापता होने की खबर का असर शेयर बाजार पर बहुत ही साफ दिखाई दिया। शुक्रवार को हांगकांग के शुरुआती कारोबार में चाइना रेनेसा के शेयरों की कीमत 50% तक गिर गई। मामले से परिचित एक व्यक्ति ने बताया कि बाओ करीब दो दिनों से कंपनी के संपर्क में नहीं है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज 29 बहमन है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 29 बहमन 1356 हिजरी शमसी को ईरान में क्या हुआ था और इस दिन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तबरेजी जनता द्वारा 29 बहमन को किया जाने वाला प्रतिरोध ईरानी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। जर्मनी में 5,00,000 से अधिक लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर देश के चांसलर से यूक्रेन हथियार न भेजने की मांग की है। इसी प्रकार इन लोगों ने हथियार भेजने के स्थान पर मॉस्को और कीव के बीच शांति वार्ता की मांग की है। पिछले महीनों में बहुत से देशों ने जर्मनी से मांग की थी कि वो जर्मन निर्मित टैंक लेपर्ड 2 को यूक्रेन भेजने की अनुमति दे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारत की केंद्र सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि लोगों का घर गिराना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि घर देना उपलब्धि है। ईरान की इस्लामी क्रांति के समर्थन में तबरेजी जनता और लोगों के प्रदर्शन व प्रतिरोध ने इस्लामी क्रांति की सफलता और शाह की अत्याचारी सरकार के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं 29 बहमन 1356 को लोगों की उपस्थिति इमाम सज्जाद और हजरत जैनब जैसा कार्य था। समीक्षा पेश करें साथ ही अख्तर अब्बास।
दोस्तों, आज 29 बहमन है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 29 बहमन 1356 हिजरी शमसी को ईरान में क्या हुआ था और इस दिन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तबरेजी जनता द्वारा 29 बहमन को किया जाने वाला प्रतिरोध ईरानी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ये प्रतिरोध ईरान में रजा शाह पहलवी की तायना शाही सरकार के अंत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। समाचार पत्र इत्तेलात में एक लेख प्रकाशित किया गया था जिसमें ईरान की इस्लामी व्यवस्था के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की शान में कुछ अपमानजनक बातें कही गई थीं, जिसके विरोध में पवित्र नगर कुम के लोग कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और 1356 को ये प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया और शाह के सुरक्षा कर्मियों ने हमला करके पवित्र नगर कुम के बहुत से लोगों को शहीद व घायल कर दिया। इन शहीदों की याद मनाने के लिए उनके चेहलों के अवसर पर तबरेज के लोगों ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन से इस्लामी क्रांति के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन जोर पकड़ गए, यहाँ तक कि शाह की अत्याचारी और तानाशाही सरकार का अंत हो गया। शाह के सुरक्षा कर्मियों ने तबरेज में होने वाले प्रदर्शनों में भी बहुत से लोगों को शहीद व घायल कर दिया था। तबरेज के लोगों का प्रतिरोध व प्रदर्शन ईरान के दूसरे नगरों के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसके 40 दिन बाद यानी 10 फरवरी 1357 हिजरी शमसी को इस्फहान, जहरूम, यजद, शिराज और अहवाज में भी क्रांतिकारी लोगों और जनता ने तबरेज में शहीद होने वाले लोगों के चेहरों की याद में प्रदर्शन किया और ईरान में होने वाले प्रदर्शनों पर विदेशी संचार माध्यमों में भी ध्यान दिया जाने लगा। ईरान की इस्लामी क्रांति के समर्थन में तबरेजी जनता और लोगों के प्रदर्शन व प्रतिरोध ने इस्लामी क्रांति की सफलता और शाह की अत्याचारी सरकार के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता प्रतिवर्ष अज़रबैजान के लोगों से मुलाकात करते हैं और 29 बहमन को किए जाने वाले प्रतिरोध पर प्रकाश डालते हैं। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं कि 29 बहमन 1356 को लोगों की उपस्थिति इमाम सज्जाद और हजरत जैनब जैसा कार्य था जिन्होंने आशूर की घटना को भूलने नहीं दिया। तबरेज के लोगों ने कुम के प्रदर्शनकारियों की शहादत को भूलने नहीं दिया। मैं नहीं भूल सकता कि उन दिनों सूचना आती थी कि शाह की तानाशाही सरकार अपने सुरक्षा कर्मियों को तबरेज भेजती थी ताकि लोगों की उपस्थिति व प्रदर्शन को रोक सके, परंतु लोग 29 बहमन को मैदान में आ गए और आज तक ये दिन जिंदा है और यही वजह है जो मैं आपसे मुलाकात के लिए आग्रह करता हूँ। बहरहाल, ईरान की इस्लामी क्रांति के अस्तित्व में आने की एक बहुत बड़ी वजह जनता का शाह के अत्याचारों से अवगत व जागरूक हो जाना था और यही जागरूकता इस बात का कारण बनी कि जनता ने शाह की अत्याचारी सरकार का अंत करके इस्लामी व्यवस्था के पक्ष में मतदान किया और स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जनता के मतों के आधार पर इस्लामी व्यवस्था का गठन किया जो 43 वर्षों से अधिक समय से बाकी है और उसके बाकी रहने की सबसे बड़ी वजह भारी जन समर्थन है। इस्लामी क्रांति की सफलता की 44वीं वर्षगांठ पर اس کے سمرتھن میں سموچے ایران میں نکالی جانے والی مہاریلیوں کو اسی پریپریکش میں دیکھا جا سکتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
پچھلے مہینوں میں بہت سے دیشوں نے جرمنی سے مانگ کی تھی کہ وہ جرمن نرمت ٹینک لیپرڈ 2 کو یوکرین بھیجنے کی انومتی دے۔ پچھلے جنوری مہینے میں پشمی دیشوں کے دباؤ کے بعد جرمنی نے یوکرین ٹینک بھیجنے پر سہمتی جتائی تھی، پرنتو ابھی تک ٹینک بھیجنے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ساتھ ہی قائم رضوی،
جرمنی میں 500,000 سے ادھک لوگوں نے ایک ہستاکشر ابھیان چلا کر اس دیش کے چانسلر سے یوکرین ہتھیار نہ بھیجنے کی مانگ کی ہے۔ اسی پرکار ان لوگوں نے ہتھیار بھیجنے کے ستھان پر ماسکو اور کیف کے بیچ شانتی وارتا کی بھی مانگ کی ہے۔ روچک بات یہ ہے کہ یہ ہستاکشر ابھیان 10 فروری سے آرمبھ ہوا تھا۔ شکروار کی رات تک 500,000 سے ادھک لوگوں نے اس پر ہستاکشر کر دیے تھے۔ یہ ہستاکشر ابھیان ابھی بھی جاری ہے۔ جرمن چانسلر نے بھی اس بات کو سویکار کیا ہے۔ انہوں نے شکروار کو میونخ میں ہونے والی سرکشا کانفرنس کے ادگھاٹن بھاشن میں کہا، یوکرین ہتھیار بھیجے جانے کے بارے میں جرمن واسی ایک مت نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یوکرین کے گھٹک دیشوں کا آہوان کیا ہے کہ جلد سے جلد وہ اپنے ٹینکوں کو یوکرین بھیجیں۔ پچھلے مہینوں میں بہت سے دیشوں نے جرمنی سے مانگ کی تھی کہ وہ جرمن نرمت ٹینک لیپرڈ 2 کو یوکرین بھیجنے کی انومتی دے دے۔ جنوری مہینے میں پشچمی دیشوں کے دباؤ کے بعد جرمن نے یوکرین ٹینک بھیجنے پر سہمتی جتائی تھی، پرنتو ابھی تک ٹینک بھیجنے کی کوئی بھی خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ پچھلے اپریل مہینے میں جرمنی کے پرتیرکشا منتری نے کہا تھا کہ لیپرڈ 2 ٹینکوں کی ایک کھیپ یوکرین بھیجی جائے گی، پرنتو انہوں نے پچھلے بدھوار کو سویکار کیا کہ ابھی تک یہ کاریہ انجام نہیں پایا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جرمنی یوکرین ٹینک بھیجنے میں جو ولمب کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روس کی پرتکریا سے چنتت ہے۔ پرنتو نہ کیول جرمنی بلکہ دوسرے یوروپی دیش یوکرین کو وبھن پرکار کے دوسرے ہتھیار بھیج رہے ہیں جو روس یوکرین یدھ کے لمبا کھینچنے کا کارن بنے ہیں۔ جرمنی کے ودیش منتری نے بھی حال ہی میں یہ کہا تھا کہ یوروپی دیش روس سے جنگ کر رہے ہیں اور یوکرین کی رکشا کے لیے انہیں ادھک پریاس کرنے چاہیے۔ ان کے اس بیان کی جرمنی کے اندر بہت ادھک آلوچنا کی گئی، وشیش کر وپکشی دلوں کی اور سے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یوروپی دیش اس شڈیانتر میں پھنستے جا رہے ہیں جسے امریکہ نے یوروپی دیشوں اور روس کو آمنے سامنے کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ امریکہ یوکرین کی مدد کے لیے ہتھیار بھیج کر آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہا ہے۔ اس کام میں اس نے دوسرے پشچمی دیشوں کو بھی شامل کر رکھا ہے اور یہ دیش یوکرین کی مدد کے لیے لگاتار ہتھیار بھیج رہے ہیں۔ یہ وشے روس اور یوکرین کے مدھیہ جاری یدھ کے لمبا کھینچنے کا مہتوپورن کارن بنا ہوا ہے۔ اگر امریکہ اور یوروپی و پشچمی دیش یوکرین کی مدد نہ کرتے تو یہ یدھ اب تک سماپت ہو چکا ہوتا۔ بہت سے ٹیکہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ ودت میں یہ یدھ روس اور یوکرین کے بیچ چل رہا ہے، پر واسطو میں یہ امریکہ اور پشچمی دیش ہیں جو روس سے جنگ کر رہے ہیں۔
جموں کشمیر کے پورو مکھیہ منتری ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھارت کی کیندر سرکار کی نیتیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سرکار اپنی پاور دکھا رہی ہے اور یہی پاور اس سرکار کو ڈبو دے گا۔
جموں کشمیر کے بھوت پورو مکھیہ منتری اور لوک سبھا سانسد ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نئی دہلی پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے کہا کہ یہ رجیم जम्मू कश्मीर के लोगों के विरुद्ध कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि डिमोलिशन के नाम पे आम लोगों को सताया जा रहा है और ये परिस्थिति जम्मू और कश्मीर में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गरीबों को बेघर करने का अभियान इस रिजिम ने आरंभ कर रखा है उसके गंभीर परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के घर गिराना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है बल्कि लोगों को घर देना एक बड़ा काम हो सकता है।
देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रहा, ये जम्मू में भी हो रहा है। इसमें सब लोग को एक मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। आज हम नौकरी तो दे नहीं सकते। अगर इंसान ने 50 साल पहले एक दुकान बनाई है, उसे रोजी रोटी कमा रहा है, आज ही जरूरी था उनकी दुकानों को उड़ाने का? और इस सर्दी के मौसम में कि इनको सोचना चाहिए था। दिल्ली में भी इलीगल कॉलोनीज थी, उनको कैसे रेगुलराइज किया गया? उनको रेगुलराइज किया गया, क्या यहाँ नहीं कर सकते थे? गरीबों को क्या उठाना था, उछालना था? ये गलत किया। और मैं नहीं समझता ये हिंदू मुसलमान का मामला है, ये हमारे तशख्खुस को ही खत्म करने की जरूरत है। ये चाहते हैं कि अपना ये पावर दिखाएं, ये पावर इनको खुद डुबो देगा।
उन्होंने कहा कि इस रजीम ने बड़े बड़े वादे तो किए परंतु जमीनी स्तर पर इस रजीम ने लोगों को मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि उन्हें आशा है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जमा जो याचिका है उस पर सुनवाई होगी और जम्मू कश्मीर के हितों को समझकर उसका निर्णय सामने आएगा। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के हक में उसका निर्णय नहीं आया तो ये बहुत ही गंभीर होगा क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के जनता की सब आशाएं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई है। इस बीच आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो उन्होंने आरंभ कर रखी है उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर आक्रमण करना है जिन्होंने सरकारी जमीन हड़प ली है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है और अगर गरीब लोगों के पास कोई जमीन भी है तो उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
तो श्रोताओ, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपने सुना राजनैतिक चर्चा, और अब पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम ईरानी व्यंजन।
ईरानी व्यंजन।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरानी व्यंजन की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम गुलिस्तान प्रांत में तुर्कमन जाति और उनके खानों से आपको परिचित कराएंगे।
दोस्तों, गुलिस्तान प्रांत की एक बड़ी खूबसूरती यहाँ बसने वाली जातियों की विविधता है। यहाँ बहुत सारे इलाकों से लोग पलायन करके आए हैं। इनमें तुर्कमन, सीस्तानी, बलोच और कजाक जातियों के लोगों की संख्या अधिक है। तुर्कमन लोग तुर्क मूल के हैं जिनका संबंध मध्य एशिया से रहा है। उन्होंने अतीत में कबीलों और बंजारों की शक्ल में वहाँ से पलायन किया था। इन जातियों के लोग इस समय तुर्कमेनिस्तान में, रूस के एक भाग में, इसी तरह उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के एक भाग में बसते हैं। पूर्वोत्तरी ईरान में कई जगहों पर इस जाति के लोगों की बस्तियां हैं। वे लोग तुर्कमनी जबान बोलते हैं। ईरान की 2% जनसंख्या तुर्कमनों पर आधारित है। ये लगभग 15 लाख की तादाद है। ईरान के तुर्कमन ज़्यादातर गुलिस्तान प्रांत में रहते हैं, यानी कैस्पियन सागर के दक्षिण पूर्व में और तुर्कमन सहरा के इलाके में। तुर्कमन सहरा इलाका गुलिस्तान प्रांत के बड़े भाग में फैला हुआ है। इसके कई शहरों में तुर्कमन जाति के लोग बसे हुए हैं।
तुर्कमन जाति की संस्कृति बड़ी समृद्ध है। उनके रीति रिवाज, लिबास, हस्तकला, उद्योग, संगीत और खानों में बड़ी विविधता है। ترکمنوں کے رنگ برنگے لباس اور ہاتھوں سے بنے ان کے سندر زیور ہر دیکھنے والے کی آنکھ چکا چوند کر دیتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ترکمن سنگیت ہے جو ترکمن سنسکرتی کا اٹوٹ انگ ہے۔ ترکمن سنگیت کا سب سے مہتوپورن ساز تامدیرے کہلاتا ہے، جو ستار کی چھوٹی شکل کہا جا سکتا ہے۔
ہم نے پہلے بھی کہا کہ ترکمن جاتی کی سنسکرتی بہت ہی سمردھ ہے۔ وہ اسلام دھرم کے ماننے والے سنی مسلک کے لوگ ہیں جو اسلامی پرمپراؤں کے پابند ہیں۔ ترکمنوں کی مولیوان پرمپراؤں میں سے ایک مہتوپورن پرمپرا دسترخوان اور روٹی کا سمان ہے، جس پر اسلام دھرم میں بڑی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت یعنی روٹی دسترخوان پر رکھی جاتی ہے۔ ترکمن جاتی کے لوگوں میں آج بھی یہ چلن ہے کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو زمین پر دسترخوان بچھاتے ہیں اور سارے لوگ اسی ایک دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ترکمن جاتی کے لوگ دسترخوان کو ساچاک کہتے ہیں۔ ترکمن جاتی کے لوگوں کی بہت اچھی عادت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے وہ بسم اللہ ضرور کہتے ہیں، اور جب سارے لوگ کھانا کھا چکتے ہیں تو دسترخوان پر بیٹھا پریوار کا بزرگ قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور سارے لوگ اللہ کی اس نعمت پر جو انہیں پردان ہوئی ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اگر ہم ترکمن جاتی کے کھانوں اور پکوانوں کی بات کریں تو ان میں کچھ کھانے بہت مشہور ہیں۔ جیسے ہی ترکمن جاتی کا نام لیا جاتا ہے، ان کھانوں کی تصویر اور ان کا سواد یاد آ جاتا ہے۔ ان کھانوں میں چکترمے، کتلامہ، بوریک، کوریک، بشمے اور سموسے یا سموسا مکھے ہیں۔
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको तुर्कमन जाति और उनकी संस्कृति के बारे में बताना जा रहे हैं। तुर्कमन जाति के एक पसंदीदा खाने के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसे चकदरमे कहते हैं। ये तुर्कमन जाति का वो खाना है जिसे विशेष अवसरों पर तैयार किया जाता है। कोई बड़ी मेहमानी हो, शादी हो या शोक सभा हो, इसी तरह के अवसरों पर چکدر میں کھانا پکایا جاتا ہے۔ یہ ترکمن جاتی کا ہی پسندیدہ کھانا نہیں ہے، بلکہ دوسرے بھی بہت سے لوگوں کا بہت ہی پسندیدہ پکوان ہے۔
اس کے لیے بہت سے لوگ گلستان پرانت کی یاترا پر جاتے ہیں اور چکدر میں کا آنند لیتے ہیں۔ اگر گلستان پرانت کی سیر کا کارکرم ہو تب تو یہ بڑا اوسر ہے اور آپ بہت ساری چیزوں کا آنند لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں ہی چکدرمے کا آنند لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کھانا کیسے تیار ہوتا ہے۔ چکدرمے میں گوشت، پیاز، چاول، ٹماٹر یا ٹماٹر کا پیسٹ اور تل کا تیل پڑتا ہے۔ کبھی گوشت کی جگہ مچھلی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا پوشٹک آہار ہے۔ چکدرمے میں کئی پرکار سے پکایا جاتا ہے۔ اسے کبھی مٹن کے ساتھ پکایا جاتا ہے، کبھی مچھلی کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ ہم آپ کو مٹن کے ساتھ چکدرمے میں پکانے کی ودھی بتائیں گے۔
اگر تین لوگوں کے لیے یہ چکدرمے میں پکانا ہے تو اس کے لیے ضروری سامگریوں میں 350 گرام مٹن، 250 گرام کدوکس کیا ہوا ٹماٹر، 1 پیاز، 2 چمچ ٹماٹر کا پیسٹ، نمک، مرچ، مسالہ اور تل کا تیل۔ اگر آپ کم لوگوں کے لیے یہ کھانا پکانا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی لوہے کی پتیلی لے لیجئے۔ سب سے پہلے چاول کو دھو لیجئے اور کچھ گھنٹوں کے لیے اسے پانی میں بھگو دیجئے۔ تھوڑا سا نمک بھی اس پر ڈال دیجئے۔ میڈیم سائز کی پتیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالیے اور ہلکی آنچ پر رکھ دیجئے کہ تیل گرم ہو جائے۔ اس کے بعد کٹی ہوئی پیاز اس میں ڈال دیجئے۔ تھوڑی دیر تک اسے چلاتے رہیے تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ اس کے بعد پیاز میں ہلدی ڈال دیجئے، پھر اسے چلاتے رہیے یہاں تک کہ ہلدی کی مہک ختم ہو جائے۔ اس کے بعد گوشت کے ٹکڑوں کو پتیلی میں ڈال دیجئے اور اسے اچھی طرح سے بھونیے۔
بعد میں نمک، مرچ اور مسالہ گوشت میں ڈال دیجئے اور اچھی طرح چلائیے۔ اب کدوکس کیا ہوا ٹماٹر گوشت میں ڈال دیجئے۔ جب ٹماٹر کا پانی سوکھ جائے تو ٹماٹر کا پیسٹ بھی ڈال دیجئے۔ इसे इतनी देर तक पकने दीजिए कि टमाटर का कच्चापन खत्म हो जाए। इसके बाद 2.5 कप पानी डाल दीजिए और हल्के आंच पर धीरे धीरे तक पकने दीजिए। इसमें लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद पतीली का ढक्कन खोलिए और धुला हुआ चावल और पर्याप्त मात्रा में पानी डाल दीजिए। अब चकतरमे को दम लेने दीजिए। आधा घंटा बाद ढक्कन हटाइए। आपका चकतरमे तैयार है। इसके साथ स्थानीय छाछ या दही का इस्तेमाल भी किया जाता है। साथ ही लोग सलाद या लहसुन का अचार भी परोसते हैं।
पौष्टिक और स्वादिष्ट ईरानी खानों का परिचय। घर बैठे सीखिए लज्जतदार ईरानी खाने पकाने की विधि। कार्यक्रम श्रृंखला ईरानी व्यंजन में हर शनिवार को कार्यक्रम ईरानी व्यंजन।
दोस्तों, बंदर तुर्कमन शहर गुलिस्तान प्रांत के दर्शनीय स्थानों में से है जहां पर्यटक बहुत जाते हैं। ये बंदरगाह भी है। इस शहर के अधिकतर लोग तुर्कमन जाति के हैं। यहां के लोगों का एक बड़ा अहम शौक घोड़ों को पालना है। ये घुड़दौड़ में इस्तेमाल होने वाले घोड़े होते हैं। तुर्कमन हॉर्स घोड़ों की बड़ी महत्वपूर्ण प्रजाति है जो गुलिस्तान प्रांत के तुर्कमन सहारा इलाके में बड़ी संख्या में पाई जाती है। तुर्कमेनिस्तान देश में भी इस प्रजाति के घोड़ों की बड़ी संख्या देखी जा सकती है। इस तटीय शहर की एक दर्शनीय चीज़ यहाँ का बाजार है जो गुरगान खाड़ी के किनारे और कैस्पियन सागर के सुंदर तट पर स्थित है। इस बाजार में स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड का बड़ा रिवाज है। इसमें बोरके, समोसे या समोसा तथा बीच में प्रमुख फास्ट फूड है।
बिश्मे एक प्रकार की मिठाई है जो तुर्कमान जाति के लोग खास तौर पर बनाते हैं और बड़ी स्वादिष्ट होती है। इस मिठाई को बड़ी आसानी से घर में बनाया जा सकता है। बिश्मे मिठाई का खमीर तैयार करने के लिए 2 कप दही, 1.5 गिलास पानी, 3 कप शक्कर, 2 अंडे, 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच वेनिला, 3 गिलास आटा और थोड़ा सा तेल। ये स्वादिष्ट तुर्कमन मिठाई बनाने के लिए पहले शक्कर में अंडे फोड़कर मिला लीजिए। उसमें दही और दूध भी डाल दीजिए। इसके बाद तेल और आखिर में आटा, वैनिला और बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। मिठाई का रंग अच्छा हो इसके लिए आप थोड़ा सा ज़ाफ़रान मिला सकते हैं। इसके बाद इसके 20 मिनट तक इसे किसी गर्म जगह पर रख दीजिए। 20 मिनट बाद इसे अच्छी तरह गूँथ लीजिए और खमीर तैयार कर लीजिए। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए या सांचों के इस्तेमाल से इसे अलग अलग शक्लों में काट लीजिए। अब आप इसे गर्म तेल में डालिए। इसे डीप फ्राई करना है ताकि वो अच्छी तरह पक जाए और फूल भी जाए। तलते समय आंख धीमी रखिए ताकि मिठाई अंदर तक पक जाए। हम आशा करते हैं कि ये मिठाई आपको पसंद आएगी और इसे खाने के साथ ही आपको तुर्कमन जाति की याद आएगी।
तुर्कमन जाति के लोग अपने मेहमानों का आवभगत करने के लिए जिन मिठाइयों का बंदोबस्त करते हैं उनमें से एक मिठाई का नाम बीश्मे है, जिसे हर कोई बड़े ही चाव से खाता है। ये भी कहते हैं कि इस मिठाई में बड़ी ऊर्जा होती है। तुर्कमन जाति में ये रिवाज है कि जब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो अपने साथ मिठाइयाँ और फल भी ले जाते हैं। इनमें बीश्मे मिठाई भी मुख्य रूप से पेश की जाती है। तुर्कमन इलाकों की सैर करने वाले पर्यटक भी अपने साथ ये मिठाई तोहफे के तौर पर लाते हैं और अपने रिश्तेदारों के बीच उसे बांटते हैं।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपने अभी सुना ईरानी व्यंजन। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम पेश कर रहे हैं इस सभा का अंतिम कार्यक्रम अच्छी बातें।
अच्छी आदतें।
दोस्तों, कार्यक्रम अच्छी आदतें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और सैयद मैसाम का सलाम स्वीकार कीजिए।
कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने उल्लेख किया था कि अगर आप अपनी क्षमताओं के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपनी कमियों को सोचकर परेशान होते हैं तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यह आपकी एक ऐसी कमजोरी हो सकती है, यहां तक कि ये आपको अपने जीवन के कुछ अनमोल पहलुओं का आनंद लेने से भी रोक सकती है। दूसरों के बजाय अपनी तुलना खुद अपने आप से करें। अपने आप को निखारने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इस तरह से आप खुद ही अपने लिए तरक्की के रास्ते खोलते जाएंगे और खुद से ही प्रेरणा हासिल करते जाएंगे। जब आप अपनी सफलता की कसौटी का इस्तेमाल अपनी तरक्की में करते हैं तो आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं।
दुर्भाग्य से कई महिलाएं और पुरुष अपने जीवन साथी की तुलना दूसरों के जीवन साथी से करते हैं। कुछ लोग इस तुलना को अपने जीवन साथी को संवेदनशील बनाने के लिए करते हैं ताकि वह खुद में सुधार कर सके या अपना व्यवहार बदलने के लिए अधिक प्रयास करे। लेकिन ये तरीका न सिर्फ ये है कि काम नहीं करता बल्कि बहुत हानिकारक भी होता है, क्योंकि तुलनात्मक व्यवहार दूसरे पक्ष की भावनाओं और व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है और इससे उसके आत्मविश्वास पर गंभीर चोट लगती है। इसके अलावा इससे रिश्ते में उदासीनता आती है और पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचने लगते हैं।
कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पति पत्नी द्वारा एक दूसरे की दूसरों से तुलना करने के कुछ कारण होते हैं जिनकी जड़ें बचपन में की गई परवरिश से मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन, अपनी चीजों, अपने रिश्तों, अपने स्वरूप और अपनी नौकरी से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और वो हर चीज में श्रेष्ठ और यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ बनना पसंद करता है। जीवन साथी की दूसरों से तुलना करने का एक कारण स्वयं जीवन साथी भी हो सकता है। हो सकता है इसका कारण जीवन साथी की ओर से भावनात्मक, यौन या आर्थिक रूप से कमी के कारण हो।
अपने जीवन साथी की दूसरों से तुलना करने का एक और नकारात्मक परिणाम यह होता है कि आप अपनी नज़र में उसकी हैसियत को कम करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके प्रति उदासीन होने लगते हैं। रिश्तों में उदासीनता जीवन को काफी व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है और इसका असर बच्चों की परवरिश और उनकी मानसिकता पर भी पड़ता है। इसके अलावा गलत तुलना जीवन साथी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि उसके जीवन साथी ने उसे वैसे ही स्वीकार नहीं किया है जैसा या जैसी वह है और अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए वह उदास और निराश हो जाता है।
सबसे पहले आप इस बात का निर्धारण करें कि आपको खुद से और अपने जीवन से क्या अपेक्षाएं और इच्छाएं हैं। याद रखें कि हर किसी का जीवन आदित्य होता है और आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को दूसरों की परिस्थितियों के कारण प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जब आप अपनी पत्नी से बेहतर दूसरे की पत्नी को देखें और तुलना करना शुरू करें तो इस बिंदु को ध्यान में रखें कि आपने उसे अपने जीवन साथी के रूप में चुना था और हर व्यक्ति में नकारात्मक पहलुओं के साथ साथ अच्छे गुण भी होते हैं।
जिस तरह से जीवन साथी की तुलना दूसरों के जीवन साथी से नहीं करनी चाहिए, उसी तरह बच्चों की तुलना भी दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए। अक्सर माँ बाप, अध्यापक और रिश्तेदार बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं और अनजाने में उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। बच्चों की एक दूसरे से तुलना करने से उनका विकास प्रभावित होता है और उनमें उत्साह कम हो जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तुलना करना एक गलत काम है, चाहे वह बच्चों के बारे में हो या जवानों और बूढ़ों के बारे में। इसका सिर्फ नकारात्मक पहलू ही सामने आता है।
अगर दूसरों से बच्चों की तुलना करना एक आदत बन जाएगी तो बच्चों के बचपन का उत्साह और जोश खाली हो जाएगा। बच्चों की उनके दोस्तों या परिवार के दूसरे बच्चों या भाई बहनों की आपस में तुलना करने से न सिर्फ बच्चों को कोई मदद नहीं मिलेगी बल्कि उनके व्यवहार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तुलना से उनके आत्मविश्वास पर गंभीर चोट पहुंचती है और उनमें हीन भावना उत्पन्न होती है। इस गलत आदत पर काबू पाने के लिए आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपका बच्चा एक स्वतंत्र प्राणी है जिसके विकास और जीवन जीने का अपना तरीका होगा।
कुछ माँ बाप ये सोचकर अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं कि अगर वे सफल बच्चों से अपने बच्चों की तुलना करेंगे तो उनके बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे और सफल बच्चों से सीख लेकर खुद भी आगे बढ़ेंगे। हालांकि जैसा कि वे सोचते हैं, नतीजा उसके विपरीत होता है। इस तरह से न केवल वे अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं बल्कि वे उनकी रचनात्मक क्षमता को भी कुचल देते हैं और उनके अंदर उन बच्चों के प्रति नफरत भर देते हैं जिनसे उनकी तुलना की जा रही होती है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ऐसे बहुत से तर्क हैं जो ये साबित करते हैं कि बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना करना एक खतरनाक काम है और उसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। ऐसा ही एक परिणाम गुस्से के रूप में जाहिर होता है। जब बच्चों को ये एहसास होने लगता है कि उनके अंदर काफी खामियां हैं तो वे न सिर्फ तुलना करने वाले के प्रति कटु और उदास महसूस करते हैं बल्कि उस बच्चे के प्रति भी क्रोधित महसूस करते हैं जिससे उनकी तुलना की जा रही होती है। इसलिए अकलमंदी इसी में होगी कि आप अपने बच्चे की दूसरों से सकारात्मक तरीके से भी तुलना ना करें।
इसके अलावा बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षा करना और उनके दोस्तों और साथियों से तुलना करना बच्चों को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है। जिन माँ बाप को अपने बच्चों से अत्यधिक अपेक्षाएं होती हैं और वे उन पर दबाव डालते हैं, दरअसल वे बच्चों को झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं। माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी उम्र में बच्चों की तुलना करना एक गलत बात है जिससे बच्चे की अपनी प्रतिभा को नुकसान पहुंचता है और उसमें निराशा पैदा होती है। बच्चा तुलना से बचने के लिए अपने माँ बाप से ही दूरी बनाने लगता है जिससे कभी कभी खतरनाक परिणाम निकलते हैं।
माँ बाप को समझना चाहिए कि अपने बच्चों की आपस में तुलना करने या उनके दोस्तों से तुलना करने से उनके बीच एक गहरी खाई पैदा होती है। इस खाई से उनमें ईर्ष्या और आक्रोश की भावना पैदा होती है जिससे भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसके अलावा जिन बच्चों की हमेशा तुलना की जाती है उनमें हीन भावना पैदा होती है और वे खुद को कमतर और बेकार समझने लगते हैं। उनमें नई चीजें सीखने का उत्साह कम हो जाता है। माँ बाप जब अपने बच्चे की कमजोरियों और खामियों को बहुत बारीकी से परखने लगते हैं तो वे लगातार उनकी कमजोरियों का बखान करने लगते हैं और उनकी तुलना दूसरों से करने लगते हैं जिससे उनके सम्मान और गौरव को चोट पहुंचती है।
तुलना का एक अन्य नकारात्मक परिणाम बच्चों में तनाव उत्पन्न होना है, क्योंकि बच्चों की लगातार तुलना से उन्हें अपने साथियों के मुकाबले में अपने कंधों पर भारी बोझ महसूस होता है और वे असहज महसूस करते हैं। कुछ माँ बाप का मानना होता है कि दूसरे बच्चों की अपने बच्चों के सामने अच्छाइयां बयान करने से भी वे अपने अंदर सुधार लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि यह एक गलत धारणा है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आपके बच्चे के दिमाग में इन तुलनाओं की टीस हमेशा के लिए घर कर सकती है।
यहाँ ये बिंदु उल्लेखनीय है कि माँ या बाप होना कोई एक प्रतिस्पर्धा नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि दूसरे माँ बाप को ये दिखाया जाए कि आपके बच्चे दूसरों से कितने बेहतर हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि माँ बाप और कुल मिलाकर सभी बुजुर्ग बच्चों की तुलना करने से बचें और इसके बजाय वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचें, जो न केवल नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं बल्कि उनके विकास और प्रतिभा को भी बढ़ावा देते हैं। उदाहरण स्वरूप, अपने बच्चों के प्रयासों की सराहना करें उस वक्त भी जब वे कोई खास प्रगति नहीं कर रहे हों। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होगा। अपने बच्चों की कमजोरियों को देखकर उनका उत्साह बढ़ाएं। अगर उन्हें मदद की जरूरत है तो उनकी मदद करें। ध्यान रखिए कि माँ बाप को अपने बच्चों से अवास्तविक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, और अंत में अपने बच्चों से बिना शर्त प्यार करें। इससे उनके विकास में बहुत मदद मिलेगी। इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपको हमारे कैसे लगते हैं इस बारे में आप हमें ज़रूर बताया कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया के लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, hindi@wsirib.ir। हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, partstoday.ir/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न हो रही है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। Thank you.